पाठ 42, अध्याय 27, पुस्तक का अंत। आज हम लैव्य व्यवस्था की पुस्तक के अंतिम अध्याय का अध्ययन करेंगे और लैव्य व्यवस्था को समाप्त करेंगे। इसे समाप्त करने के लिए हमें थोड़ा लंबा चलना पड़ सकता है।
यह दिलचस्प है कि लैव्य व्यवस्था में जिन अंतिम कुछ मामलों पर बात की गई है, वे पवित्र स्थान के वित्त पोषण के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाइबल के दृष्टिकोण से पवित्र स्थान का संचालन, जो इस समय इज़राइल के इतिहास में एक पोर्टेबल तंबू था, जंगल का तंबू, लेकिन बाद में एक निश्चित इमारत मंदिर बन गया, कई स्रोतों से वित्त पोषित किया जा सकता था। और यह अध्याय पवित्र स्थान के वित्त पोषण की कई प्रमुख श्रेणियों से संबंधित है। चांदी और जानवरों की प्रतिज्ञा, घरों और भूमि जैसी वास्तविक संपत्ति का अभिषेक, ज्येष्ठ पशुओं और फसलों के पहले फलों का दान, संपत्ति का दान और दशमांश। इस अध्याय को पढ़ते हुए हम पाते हैं कि सामान्य तौर पर इसका उद्देश्य पवित्र स्थान का संचालन करने वाले पुरोहित वर्ग के लिए चांदी प्राप्त करना था, अधिकतर मामलों में, ताकि रख रखाव और संचालन के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो उसे खरीदा जा सके। इसलिए हम मूल्यों की एक अनुसूची देखेंगे, जिसमें भूमि और जानवरों की विभिन्न प्रतिज्ञाएं, यहां तक कि लोगों को भी चांदी के बदले में बदला जा सकता है। यानी विचार यह था कि पवित्र स्थान को इस तरह देने की प्रतिज्ञा की जाएगी और फिर वह व्यक्ति वापस आएगा और छुराएगा, वापस खरीदेगा जो कुछ भी उसने दिया था। इन चीजों को छुराने में कितना खर्च आएगा, यह उन मामलों में से एक है जिनसे यह अध्याय निपटता है। हमें यह भी समझना होगा कि यह उस समय की ओर इशारा करता है जब इज़राइल भूमि पर बसा हुआ था और खाना बदोश जीवन से बहुत अलग तरह का जीवन जी रहा था जो वे वर्तमान में अनुभव कर रहे थे। सामान्य ज्ञान यह बताता है कि इज़राइल की परिस्थितियां कनान पर विजय प्राप्त करने के बाद मौलिक रूप से भिन्न होंगी और उनके पास एक स्थायी घर होगा। और यह हमारे लिए यह ध्यान देने का एक अच्छा उदाहरण है कि यह कानून के सिद्धांत हैं जिनके बारे में हमें कुछ सूक्ष्म विवरणों की तुलना में अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है, जो उस समय सांस्कृतिक और भौगोलिक मामलों से अधिक संबंधित हैं, लेकिन समय बीतने के साथ परिवर्तनशील होंगे। तो मैं स्पष्ट कर दूं, अध्याय 27 में निहित नियम और विनियम इस तरह से बनाए गए हैं कि यह एक आदर्श बन गया है कि अभयारण्य को जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसका अधिकांश हिस्सा चांदी धन था, जो कि आवश्यक आपूर्ति के लिए पशुओं और खेतों की फसलों की तुलना में विनिमय करने में आसान था। अध्याय 27 को पढ़ने से पहले मैं बस कुछ बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहले, क्या यह सब हमें जाना पहचाना नहीं लगता? जहां हम पूजा करते हैं, आराधनालय या चर्च, वहां आम तौर पर इसी तरह से धन दिया जाता है। चर्च और आराधनालय संस्था को दिए जाने वाले सभी दान को एक साथ जोड़ देते हैं और इसे दशमांश या भेंट कहते हैं। लेकिन लैव्य व्यवस्था संस्था को दिए जाने वाले धन को और अधिक विस्तृत श्रेणियों में विभाजित करता है, जिनमें से दशमांश एक है। दूसरा बस इसलिए कि आप पढ़ते समय इसके बारे में सोचेंगे, पहचाने कि दशमांश के विषय पर वास्तव में नए नियम में चर्चा नहीं की गई है। इसका केवल हल्के फुल्के ढंग से उल्लेख किया गया है और नया नियम में दशमांश शब्द का इस्तेमाल जितनी बार किया गया है उसे एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है। और भी अधिक जब इसका इस्तेमाल किया जाता है एक बार को छोड़कर, तो यह तोरह सिद्धांत के बारे में कोई बात कहने या कुलपतियों में से किसी एक की योग्यता के बारे में बोलने के संदर्भ में होता है।
मुद्दा यह है कि नए नियम में दशमांश देने का कोई आदेश नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं।
इस प्रकार कई विश्वासियों ने सीधे नया नियम आदेश की कमी का अर्थ यह निकाला है कि ईसाइयों को दशमांश देने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार संस्थाओं का समर्थन करना चाहिए। बेशक मैं किसी ऐसे चर्च या आराधनालय के बारे में नहीं सोच सकता जो इस धारणा को मानता हो। अब मैं विषय से भटक कर दशमांश देने के बारे में गहराई से चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपके लिए विचार करने के लिए कुछ विचार रखना चाहता हूं। मैं आपको मुख्य बात बताकर शुरू करूंगा। संस्था का समर्थन करने के लिए दशमांश देना और देना नया नियम में माना गया था। दूसरे शब्दों में, नया नियम को कभी भी यह नहीं माना जाना चाहिए, जैसा कि कुछ लोग करते हैं, कि यदि यीशु ने सीधे आदेश नहीं दिया है तो हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात के लिए कभी भी यह मत सोचिए कि यीशुआ के सभी शब्द रिकॉर्ड किए गए थे। हे परमेश्वर, हमारे पास हमारे बाइबल में मसीहा के उद्धरणों के लिए समर्पित कुछ ही पृष्ठ हैं, और वे लगभग 33 वर्षों तक जीवित रहे और उनमें से कम 3 वर्षों तक पवित्र आत्मा की शक्ति के तहत सेवा की। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका अधिकांश हिस्सा रिकॉर्ड नहीं किया गया। जैसा कि मैंने बार बार स्पष्ट किया है, जैसा कि यीशु ने सिखाया था, उसे इस बात का अंदाजा था कि कोई यह सोचेगा कि अगर वह व्यवस्था के हर विवरण को नहीं दोहराता है तो इसका मतलब है कि वह इसे खत्म कर रहा है। इसलिए मत्ती 5:17 में अपने सबसे प्रसिद्ध उपदेश, जिसे पर्वत पर उपदेश कहा जाता है, के बीच में उसने लोगों को याद दिलाया कि न केवल वह व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया था, बल्कि इसका एक छोटा सा विवरण तब तक नहीं गुजरेगा जब तक कि स्वर्ग और पृथ्वी समाप्त नहीं हो जाते। तोरह को पहले से ही दशमांश के सिद्धांत और कई अन्य सिद्धांतों को सिखाने के लिए स्थापित किया गया था, और यीशु पृथ्वी पर अपना समय पिता द्वारा लंबे समय से स्थापित की गई बातों को दोहराने में नहीं बिताने वाला था।
नया नियम बाइबल का वह भाग नहीं है जिसमें पिछले भाग, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता की हर बात को दोहराया जाना चाहिए ताकि उसे मान्य किया जा सके। यह चर्च की सबसे अधिक जिज्ञासु और स्पष्ट रूप से खुलासा करने वाली परंपराओं में से एक है, जो बाइबल के उस भाग से दशमांश देने की आवश्यकता को सिखाती है जिसे अन्यथा अप्रचलित और पूरी तरह से बेकार माना जाता है। जैसा कि मैंने उन उपदेशों को याद किया जो मैंने देने के विषय पर सुने हैं, केवल दुर्लभ मामले में ही नया नियम मार्ग उद्धृत किया गया है, और यह हमेशा लूका अध्याय 11 बनाम 42 की पुस्तक से है, जो यह कहता है, लूका 11:42, लेकिन तुम फरीसियों पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब और हर तरह की बगीचे की जड़ी बूटियों का दशमांश देते हो और फिर भी न्याय और परमेश्वर के प्रेम को तुच्छ जानते हो, लेकिन ये वे चीजें हैं जो तुम्हें दूसरों की उपेक्षा किए बिना करनी चाहिए थी।
और विचार यह है कि जबकि दशमांश देना अभी भी प्रभावी है, न्याय और परमेश्वर का प्रेम दशमांश का माप होना चाहिए, कि यह निश्चित रूप से आदेशों और कानूनों के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। कानूनी रूप से सही है। खैर, आइए एक अन्य सुसमाचार पर नजर डालें जिसमें मत्ती की पुस्तक में इसी उद्धरण का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इस पद को आमतौर पर टाला जाता है, मत्ती 23:23, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दसवां अंश देते हो, परंतु व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ देते हो, परंतु इन्हें ही करना चाहिए था और उन्हें भी न छोड़ते।
ओह, यहां हम यीशु को स्पष्ट रूप से बताते हुए पाते हैं कि न केवल दशमांश देना स्पष्ट रूप से व्यवस्था का ईश्वर निर्धारित प्रावधान है, बल्कि न्याय और दया और विश्वास योग्यता भी व्यवस्था के अधिक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके अलावा ये वे चीजें हैं जिन्हें आपको दूसरों की उपेक्षा किए बिना करना चाहिए था। दूसरे शब्दों में यह व्यवस्था की पूर्ण वैधता का कथन है। आपको ये चीजें, व्यवस्था में बताई गई चीजें करनी चाहिए, और आपको अन्य चीजें, व्यवस्था में बताई गई चीजें भी करनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि आधुनिक ईसाई धर्म में यह विशेष रूप से लोकप्रिय आयत क्यों नहीं है, और फिर यहां से आगे अधिकांश धर्मोपदेशों में दशमांश के बारे में सभी शिक्षाएं आमतौर पर भयावह और कथित रूप से समाप्त किए गए पुराने नियम से ली जाती है। समझिए,
यह उन बातों का एक अच्छा उदाहरण है जो मैं इन वर्षों में आपको सिखा रहा हूं। यह माना जाता है कि नए नियम के पाठक को पहले से ही व्यवस्था द्वारा कवर किए गए इन मूलभूत मामलों में अच्छी पृष्ठभूमि है। आखिरकार जब यीशु आए तो तोरह 1300 साल पुराना था। यह अभी भी यहूदी लोगों के अस्तित्व, व्यवहार और धार्मिक व्यवस्था का आधार था। यीशु दशमांश की व्याख्या नहीं करते क्योंकि इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने दशमांश देने का आदेश भी नहीं दिया, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अपने कई रूपों में दशमांश देना पहले से ही स्थापित था। हर यहूदी जानता था कि दशमांश का क्या मतलब है और उनसे किस तरह के दान की उम्मीद की जाती है और यह व्यवस्था कैसे काम करती है और इसका उद्देश्य क्या है। वैसे यीशु यह भी नहीं समझाते कि जीवित रहने के लिए सांस लेना और छोड़ना जरूरी है, न ही यह कि अगर कोई कट जाए तो खून बहेगा। न ही वे यह समझाते हैं कि व्यवस्था शब्द का क्या मतलब है, क्योंकि वे जिस किसी से भी बात कर रहे थे वे जानते थे कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब तो रह था, जब मैं आपसे बात करता हूं और बाइबल शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो मैं हर हफ्ते सबसे पहले रुक कर यह नहीं समझाता कि बाइबल क्या है, क्योंकि मैं मानता हूं कि चूंकि आप यहां हैं तो आप पहले से ही जानते हैं। मैं हर हफ्ते तोरह क्लास में पहले से ही स्थापित की गई सभी बातों को दोहराता भी नहीं हूं, अन्यथा हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे।
तो इस पृष्ठभूमि के साथ आइए लेव्य व्यवस्था अध्याय 27 पढ़ें। लेव्य व्यवस्था 27 पूरा पर है। यह कथा परमेश्वर के प्रति प्रतिज्ञा के बारे में बात करके शुरू होती है और अध्याय के बाकी हिस्से में प्रतिज्ञाओं और जो भी प्रतिज्ञा की गई थी उससे कैसे निपटना है इस पर चर्चा जारी है। यह सब सुलझाना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन वास्तव में इसका मतलब यह है, ऐतिहासिक रूप से पुरुषों ने परमेश्वर से जल्दबाजी में वादे किए हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है या वे खतरे में होते हैं या वास्तव में कुछ चाहते हैं। जैसा कि मेरे पिता WWII के अनुभवी कहा करते थे, लोमरी के बिलों में कोई नास्तिक नहीं होता। इसलिए जिन लोगों ने पहले कभी परमेश्वर या उनकी आज्ञाओं के बारे में नहीं सोचा था, जब वे प्राणघातक खतरे में थे या यहां तक कि गंभीर कठिनाई में भी अचानक धर्म को खोज लेते हैं और वे परमेश्वर से प्रतिज्ञा वादे करना शुरू कर देते हैं कि वे उन्हें जिस भी निराशाजनक स्थिति में पाते हैं उससे बाहर निकाल लेंगे। कुछ साल पहले मुझे याद है कि मैंने द एंड नामक एक मजेदार फिल्म देखी थी जिसमें डोम डेलॉयस और बर्ट रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया था। ये एक मानसिक सुविधा और कुछ सनकी लोगों के इर्द गिर्द घूमती है जो बारी बारी से वहां रहते हैं। फिल्म के अंत में बर्ट रेनॉल्ड्स तय करता है कि वह समुद्र की लहरों में उतरकर और फिर समुद्र में तैरकर खुद को मार डालेगा जब तक कि वह वापस न लौटने के बिंदु से आगे न निकल जाए, जिस बिंदु पर वह खुद को बचाने में असमर्थ होगा और डूब जाएगा। खैर, कैमरा उसका पीछा करता है क्योंकि वह नमकीन पानी में चलता है और आने वाले पानी से लड़ता है।
लहरों को तब तक सहता रहता है जब तक वह शांत पानी तक नहीं पहुंच जाता। उस समय वह क्षितिज की ओर तैरना शुरू कर देता है। हर समय अपनी परेशानियों के बारे में खुद से बात करता रहता है, किस्मत से, जब तक वह थक जाता है और एक और स्ट्रोक नहीं तैर सकता जो कि उसका पहला लक्ष्य था। उसे अचानक एहसास होता है कि उसकी समस्याएं इतनी भी बुरी नहीं हैं और वह मरना नहीं चाहता, इसीलिए वह पीछे मुड़ता है और दूर किनारे की ओर देखता है। घबराहट होने लगती है क्योंकि उसे यकीन है कि वह कभी नहीं बच पाएगा और पहली चीज जो वह एक तरह की घुटने के झटके वाली प्रतिक्रिया के रूप में करता है वह है ऊपर देखना और स्वर्ग की ओर चिल्लाना, परमेश्वर मैं आपको वह सब कुछ दे दूंगा जो मेरे पास है, सब कुछ, अगर आप मुझे सुरक्षित वापस समुद्र तट पर ले जाएंगे। जैसे ही वह तैरना जारी रखता है आशा की हल्की सी किरण उस पर हावी हो जाती है और वह फिर से स्वर्ग की ओर चिल्लाता है, परमेश्वर मैं आपको अपना 90% सब कुछ दे दूंगा अगर आप मुझे जीने दो। ऊर्जा का एक तेज झोंका उसे सुरक्षा के और भी करीब ले जाता है और बढ़ते आत्मविश्वास के साथ कि वह बच जाएगा वह चिल्लाता है, परमेश्वर मैं इसे आपके साथ बांट लूंगा, मैं अपनी सारी संपत्ति का आधा हिस्सा आपको दे दूंगा अगर आप मुझे किनारे तक पहुंचने में मदद कर दें। तैरना और मोल भाव तब तक जारी रहता है जब तक वह जमीन पर नहीं पहुंच जाता। थका हुआ लेकिन जिंदा वह पानी से बाहर निकलता है और अपनी पीठ पर लुढ़क जाता है, स्वर्ग की ओर देखता है और कहता है, परमेश्वर का शुक्र है। अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो
तो मुझे बताइए और मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। लैव्य व्यवस्था 27 में जो कुछ घटित हुआ है उसे समझाने के लिए यह सबसे अच्छा उदाहरण है जो मैं सोच सकता हूं। इब्रानियों ने हर समय परमेश्वर से प्रतिज्ञाएं की, खासकर तब जब वे चिंतित या डरे हुए थे। यह उनकी संस्कृति का हिस्सा था। अन्य समयों पर जब वे विशेष रूप से पवित्र मूड में होते थे, आप जानते हैं, जैसे कि हमने वास्तव में एक भावनात्मक गीत गाया है, वे परमेश्वर से कुछ ऐसा वादा कर सकते हैं जो आवेगपूर्ण हो। और बहुत बार ये प्रतिज्ञाएं विशेष रूप से अच्छी तरह से सोची समझी नहीं होती थीं और उन्हें जल्द ही उन्हें बनाने पर पछतावा होता था। उन दिनों प्रतिज्ञाएं न केवल सार्वजनिक होती थीं, बल्कि उन्हें पुजारियों को बताया जाता था और अनुष्ठान के साथ किया जाता था ताकि हर कोई इसके बारे में जान सके।
तो क्या ये लोग अपनी जल्दबाजी में की गई प्रतिज्ञाओं से चिपके हुए थे? निश्चित रूप से। हालांकि आप कानूनी रूप से अपनी प्रतिज्ञा को भुना सकते हैं, वापस खरीद सकते हैं, यदि उस प्रतिज्ञा में परमेश्वर को मूल्यवान संपत्ति देना शामिल है। ध्यान दें कि प्रतिज्ञा में हमेशा परमेश्वर को मूल्यवान वस्तु देना शामिल होता है। आगे से आज्ञाकारी होने का वादा करना तब तक ठीक है जब तक कि इसमें उचित मूल्य का उपहार शामिल हो। आम तौर पर यदि प्रतिज्ञा में कोई ऐसी वस्तु शामिल होती है जिसका मूल्य उचित रूप से निर्धारित किया जा सकता है, तो मोचन मूल्य उस वस्तु के बाजार मूल्य का 120% होता है। पद एक में हम पाते हैं कि मूल्य की वस्तु प्रतिज्ञा के भाग के रूप में एक मानव प्राणी थी। अब यह मत समझिए कि एक व्यक्ति ने अपने स्वामित्व वाले दास की बलि दी है, बल्कि यह एक ऐसा मामला है जहां एक व्यक्ति स्वयं को अर्पित करता है और जो वास्तव में अर्पित किया जा रहा है वह उस व्यक्ति की पवित्र स्थान मंदिर के लिए सेवा है।
अब हकीकत में मंदिर में सेवा देना बहुत मुश्किल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि परमेश्वर ने आदेश दिया था कि केवल लैव्य व्यवस्था और पुजारी ही मंदिर में सेवा कर सकते हैं। एक साधारण यहूदी ऐसा नहीं कर सकता था। इसका मतलब यह नहीं है कि एक साधारण यहूदी जिसने ऐसी प्रतिज्ञा की है वह मंदिर के कर्तव्यों के अलावा पुजारी के लिए काम नहीं कर सकता, लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता था और न ही ऐसा सोचा जाता था।
क्या परमेश्वर की सेवा में प्रवेश करने के अन्य साधन भी थे लेकिन मंदिर से झूरे नहीं रहना था? हाँ, हमें शिमशोन और शमूएल जैसे उदाहरण मिलते हैं। दोनों ने नाजीर व्रत के रूप में परमेश्वर की सेवा करने की शपथ ली थी। फिर भी उनकी सेवा के रूप में मंदिर की सेवा शामिल नहीं थी, बल्कि परमेश्वरों को समर्पित होकर अलग अलग तरीकों से सेवा की गई थी, उनके मामलों में न्यायाधीशों और भविष्यद्वक्ताओं के रूप में। चूंकि ज्यादातर मामलों में यह व्यक्ति जिसने स्वयं पवित्र स्थान सेवा के लिए प्रतिज्ञा की थी वह कभी भी अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा करने से नियम द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। जो बचा था वह प्रतिज्ञा को पूरा करना था। और पद 38 बताते हैं कि पुजारी को उस व्यक्ति के लिए धन की राशि का उचित मूल्यांकन कैसे करना था जिसने खुद को छुड़ाने के लिए प्रतिज्ञा ली थी। संक्षेप में 20 से 60 वर्ष की आयु के पुरुषों को 50 शेखेल देने पड़ते थे, उसी आयु की महिलाओं को 30 शेखेल देने पड़ते थे, 5 से 20 वर्ष की आयु के लड़कों को 20 शेखेल देने पड़ते थे, उसी आयु की लड़कियों को 10 शिशुओं और बच्चों को, 1 महीने से 5 वर्ष की आयु तक लड़के के लिए 5 शेखेल, लड़की के लिए 3 शेखेल देने पड़ते थे, 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग व्यक्ति को पुरुष के लिए 15 शेखेल और महिला के लिए 10 शेखेल देने पड़ते थे। अब यह बहुत ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन यह एक बड़ी रकम थी। इस युग में 1 महीने के काम के लिए मजदूरी लगभग 1 शेखेल थी। इसीलिए एक परिपक्व पुरुष को परमेश्वर की सेवा की अपनी प्रतिज्ञा से खुद को मुक्त करने के लिए 4 पूरे साल की मजदूरी से बेहतर कीमत चुकानी पड़ी। 1 शेखेल को 1 महीने के बराबर समझें और आपको यह समझ में आ जाएगा।
रब्बी लैव्य व्यवस्था 26 में निर्धारित मूल्यों के इस चार्ट को समतुल्यता का सिद्धांत कहते हैं। दरअसल हमने पहले भी समतुल्यता की इस अवधारणा को देखा है। हमने इसे कुछ खास तरह के पापों के प्रायश्चित के लिए कुछ खास तरह की भेंट चढ़ाने में देखा है। हमने देखा है कि उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को एक मेरहे के मूल्य का 120% चांदी के शेखेल में दोषबलि के रूप में पेश करना पड़ता है। अब आप में से कुछ महिलाओं को यह देखकर परेशानी हो सकती है कि इन आयतों में आपके पैसे का बराबर आम तौर पर एक पुरुष के पैसे का आधा से 2/3 हिस्सा होता है। दूसरी ओर हम इससे यह समझ सकते हैं कि महिलाओं को खुद परमेश्वर से मन्नतें मांगने की अनुमति थी और बच्चों, लड़कों और लड़कियों को उनके माता पिता द्वारा परमेश्वर की सेवा के लिए वचनबद्ध किया जाता था। इसलिए हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि इब्रानी समाज या तोरह के कानून महिलाओं या लड़कियों को बेकार बनाते हैं। हां, यह एक बहुत ही पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन महिलाओं के पास अधिकार और मूल्य थे और पुरुषों के उनके प्रति कर्तव्य थे। इसके अलावा जब बात ईश्वर के साथ एक महिला के रिश्ते की आती है तो वह व्यक्तिगत आधार पर भी रिश्ता बना सकती है, जैसा कि व्यक्तिगत प्रतिज्ञा करने की उसकी क्षमता से व्यक्त होता है।
पद 9 से शुरू करके हम प्रतिज्ञाबद्ध लोगों को छुराने से लेकर प्रतिज्ञाबद्ध पशुओं को छुराने तक आगे बढ़ते हैं। विचार यह था कि कोई व्यक्ति अपने व्रत के तहत किसी पशु को गिरवी रख सकता है और फिर उस पशु को छुरा सकता है। हालांकि ऐसा करने की लागत उसके मूल्य का 120% थी। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति द्वारा गिरवी रखे गए पशु को छुराने के लिए 20% अतिरिक्त शुल्क जोड़ा गया था। एक तार्किक प्रश्न ये होगा कि तो विभिन्न जानवरों का मूल्य कौन निर्धारित करता है? उत्तर, पुरोहित वर्ग। कई मायनों में यह पुरोहित वर्ग में निहित जबरदस्त शक्ति को दर्शाता है। आखिरकार पुरोहितों ने जो भी जानवर के लिए उचित मूल्य तय किया वह निश्चित रूप से बाजार में भी लागू होना चाहिए। एक जानवर के लिए एक मूल्य नहीं हो सकता था और एक ही जानवर के लिए एक अलग मूल्य हो सकता था जिसे रोजमर्रा के लेन देन में खरीदा और बेचा जाता था। इसलिए पुजारी न्याय के प्रशासक थे और मंदिर के कर्तव्यों के साथ साथ जानवरों के लिए बाजार मूल्य निर्धारित करने में उनका हाथ था। पद 9 के पीछे का विचार यह है कि प्रभु को भेंट के रूप में लाया गया कोई भी पशु मुक्ति नहीं मिलेगी। यह हमें उस सिद्धांत की ओर वापस ले जाता है जो हमने कई महीने पहले सीखा था, पवित्र संपत्ति का सिद्धांत।
जब यहां कहा गया है कि यह जानवर पवित्र है तो इसका मतलब है कि यह परमेश्वर की पवित्र संपत्ति बन जाता है। इसलिए इस जानवर को छुराया नहीं जा सकता क्योंकि यह पहले से ही परमेश्वर को हस्तांतरित किया जा चुका है, और एक बार जब यह परमेश्वर का हो जाता है तो इसे वापस नहीं पाया जा सकता। ऐसा करने का प्रयास करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की पवित्र संपत्ति का उल्लंघन करेगा और इसके लिए दंड मृत्यु है।
इसके अलावा जो व्यक्ति किसी पशु को अपनी प्रतिज्ञा के तहत बलि के लिए चुनता है वह बाद में उसकी जगह कोई दूसरा पशु नहीं दे सकता, यहां तक कि उससे अधिक मूल्य का पशु भी नहीं। पवित्र संपत्ति के सिद्धांत का एक और हिस्सा यह है कि मालिक द्वारा यह तय करने की प्रक्रिया में कि वह अपने किस पशु को बलि चढ़ाएगा, यह एक तय सौदा होता है और यह उस पशु को मंदिर में लाने से पहले भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में, दिए जाने वाले पशु का चुनाव केवल एक मानसिक निर्णय हो सकता है जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन निर्णय के उस बिंदु पर पशु परमेश्वर की पवित्र संपत्ति बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिस्थापन करने की कोशिश करता है तो पुजारी को दोनों पशुओं को रखने का निर्देश दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब दोनों ही परमेश्वर को समर्पित हो चुके हैं और इसलिए दोनों ही पवित्र संपत्ति हैं। चर्चा का पहला जानवर, चूंकि यह वेदी बलिदान के लिए उपयुक्त था, परिभाषा के अनुसार एक अनुष्ठानिक रूप से स्वच्छ जानवर था। पद 11 अनुष्ठानिक रूप से अशुद्ध जानवर के बारे में बात करता है जिसे मन्नत की भेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हम देखते हैं कि यह पूरी तरह से स्वीकार्य है। हालांकि इसका मतलब यह है कि इस जानवर को पैसे के बदले में दिया जाएगा, क्योंकि अशुद्ध जानवर का इस्तेमाल बलि के लिए नहीं किया जा सकता है और न ही पुजारी इसे खाते हैं। और जैसा कि मानक है,
जानवर के मूल्य का 20% अधिभार इसे छुराने की लागत में जोड़ा जाता है। पद 14 में मानव और पशु जीवन के उद्धार से लेकर निर्जीव वस्तुओं तक का उल्लेख किया गया है और अब तक इन मनुष्यों और पशुओं को मन्नत की भेंट के रूप में नामित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द बदल जाता है, शब्द बदलकर अभिषेक हो जाता है। दूसरे शब्दों में ये चीजें परमेश्वर के लिए अलग रखी जाती हैं। जरूरी नहीं कि मन्नत के हिस्से के रूप में, बल्कि शायद एक स्वतंत्र इच्छा के उपहार के रूप में। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने घर को पवित्र करता है लेकिन उसे वापस लेना चाहता है तो उसे बाजार मूल्य का 120% खर्च करना पड़ता है। अगला चरण यह है कि यदि कोई व्यक्ति भूमि को पवित्र करता है तो क्या होता है। भूमि का मूल्य संभावित फसल मूल्य से निर्धारित होता है, जैसा कि हमने पिछले पाठों में सीखा है। बेशक हमने इसे अध्याय 25 में देखा था जो जयंती से संबंधित था। इसके अलावा भले ही यह पुजारी द्वारा संचालित अभयारण्य है जिसे भूमि का लाभ मिलता है, फिर भी जयंती के नियम लागू होते हैं। इसके मालिक द्वारा भूमि के छुटकारे की कीमत अगले जयंती से पहले उस पर पैदा होने वाली फसलों की संख्या पर आधारित है और जयंती के वर्ष पर मूल भूमि मालिक को उसकी भूमि वापस मिल जाती है।
फिर हमें पद 25 में एक दिलचस्प फुटनोट मिलता है कि मोचन राशि का भुगतान करने का मानक अभयारण्य शेखेल होगा। इसका अर्थ 2 गुना है। 1 शेखेल सिक्के की सामग्री चांदी होनी चाहिए और 2 सटीक वजन 20 गिरा होगा। स्थिति यह थी, उन दिनों कोई भी व्यक्ति अपने सिक्के ढाल सकता था और वे सिक्के की सामग्री और वजन निर्धारित कर सकते थे। पहले सिक्के जो अधिक पैसे का इस्तेमाल करते थे वे मूल रूप से चांदी के बूंदे थे, जबकि धातु अभी भी गर्म और लचीली थी। सिक्के के मालिक की पहचान करने के लिए उस पर एक सिग्नेट रिंग को दबाया गया था। अंततः अधिकांश राजाओं और शक्तिशाली लोगों ने अपने राज्यों में उपयोग के लिए अपने स्वयं के सिक्के बनाए। लेकिन आज के विपरीत, जहां सिक्के की धातु सामग्री का बहुत कम या कोई लेना देना नहीं है, अपने वास्तविक मूल्य के लिए प्राचीन सिक्के चांदी और सोने की पूर्व निर्धारित मात्रा मात्र होते थे। तो सैद्धांतिक रूप से 1 शेखेल के सिक्के में 1 शेखेल के बराबर चांदी होती थी, 10 शेखेल के सिक्के में 10 शेखेल के बराबर चांदी होती थी और इसी तरह आगे भी। तो यहां लैव्य व्यवस्था 27 में यह निर्धारित किया गया है कि 1 शेखेल में 20 ग्रेन वजन का माप चांदी शामिल होनी चाहिए। कोई और यह निर्धारित कर सकता था कि उनका शेखेल 15 ग्रेन या 18 या 10 या जो भी हो चांदी का था। इसलिए कोई व्यक्ति अपने छुटकारे की कीमत चुकाने के लिए तंबू में मुट्ठी भर सिक्के या चांदी की डली लेकर आता था। एक पुजारी इसका वजन करता था और 20 ग्रेन चांदी के बराबर 1 शेखेल के मानक के आधार पर वह इजरायली जो कुछ भी छुराना चाहता था उसे छुराने के लिए उचित संख्या में शेखेल का भुगतान करेगा। कई वर्षों बाद प्रथम मंदिर काल सोलोमन के मंदिर के दौरान पुजारियों ने वास्तव में मंदिर के सिक्के ढाले। यीशु के दिनों में दूसरे मंदिर काल के अंत तक, जब पूरा पुजारी और मंदिर संस्थान भ्रष्ट हो चुका था, तब कोई व्यक्ति छुटकारे के लिए या बलि के लिए एनिमा खरीदने के लिए केवल मंदिर द्वारा बनाए गए सिक्कों के माध्यम से ही भुगतान कर सकता था। इसलिए यहूदी रोमन साम्राज्य के सभी हिस्सों से पूरी तरह से वैध सिक्के लेकर आते थे, चाहे वे कहीं से भी हों, लेकिन उन्हें मंदिर में मंदिर द्वारा बनाए गए सिक्कों के साथ उन्हें बदलने के लिए मजबूर किया जाता था। यीशु को जिन मुद्रा विनिमयकर्ताओं पर इतना गुस्सा आया, वे व्यापारी थे जो यहूदी तीर्थयात्रियों से कम कीमत पर विदेशी सिक्के खरीदते थे और उन्हें उनके मूल्य से अधिक कीमत पर मंदिर के सिक्कों के साथ बदलते थे। बेशक एक भारी भरकम कमीशन भी लिया जाता था और उच्च पुजारी इस घिनौने व्यवसाय में शामिल था, ताकि वह खुद के लिए भी कुछ लाभ कमा सके। चर्चा की गई अगली प्रकार की भेंट को प्रथम संतान कहा जाता है। यह प्रथम फल या ज्येष्ठ के अर्थ में है और नियम यह है कि चूंकि सभी प्रथम फल या ज्येष्ठ पशु या मनुष्य डिफॉल्ट रूप से परमेश्वर के हैं, इसलिए उन्हें पवित्र नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में
कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को पवित्र वस्तु के रूप में कुछ नहीं दे सकता है जो पहले से ही पवित्र हो चुका है। आप कुछ ऐसा नहीं दे सकते जो पहले से ही परमेश्वर का है, जैसे कि यह एक अतिरिक्त भेंट है। ऐसा कहा जाता है कि यह केवल स्वच्छ चीजों पर लागू होता है, ऐसी चीजें जिन्हें यहोवा के सामने अनुष्ठान के अनुसार शुद्ध और बलिदान के लिए उपयुक्तम घोषित किया गया है। अशुद्ध चीजें, इस मामले में अशुद्ध जानवर, वास्तव में परमेश्वर को समर्पित की जा सकती है, लेकिन उन्हें छुराया जाना चाहिए और फिर उसके बदले में पैसा दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अशुद्ध जानवर जैसे कि ऊंट को पवित्र कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को उसे छुराना होगा या पुजारी उस जानवर को पैसे के लिए किसी और को बेच देगा। हालांकि उस जानवर के लिए जो कीमत ली जानी चाहिए वह उसके सामान्य बाजार मूल्य से 20% अधिक है। मैं समझता हूं कि एक उचित प्रश्न यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक पशु को देने के लिए ऐसी अजीब प्रक्रिया से क्यों गुजरेगा, जबकि वह जानता है कि उसे छुराना होगा। याद रखें कि हम एक प्राचीन संस्कृति से निपट रहे हैं जो रीति रिवाजों और परंपराओं से भरी हुई है, और यह एक खेती और पशुपालन आधारित समाज था। हो सकता है कि व्यक्ति जानवर इसलिए दे रहा हो क्योंकि उसके पास फिलहाल पैसे नहीं है। यह सहमति है कि जानवर को कुछ समय के लिए रखा जाता है जब तक कि वह व्यक्ति उसे छुराने के लिए पैसे नहीं जुटा लेता।
पद 28 में ईश्वर के लिए किसी वस्तु को अलग रखने के दूसरे प्रकार का वर्णन किया गया है। अलग अलग बाइबलें इस विशेष प्रकार के दान के लिए अलग अलग शब्दों का उपयोग करेंगी। कुछ लोग कहेंगे समर्पित करना और अन्य कहेंगे निषेध करना। हमारा अभिषट कहता है बिना शर्त समर्पित करना। मुझे इनमें से किसी भी शब्द से कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब यह है कि ईश्वर के लिए किसी वस्तु को अलग रखने के इस विशेष प्रकार में कोई मुक्ति नहीं हो सकती। ये एक स्थायी समर्पण है।
हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह पहचानना नहीं है कि हर तरह की भेंट के लिए मनमाना और डीला ढाला शब्द या पद चुना जाए, जैसे कि व्रत, फिर अभिषेक और फिर समर्पित या निषिद्ध इत्यादि। महत्वपूर्ण बात यह देखना है कि ईश्वर को देने या ईश्वर के लिए अलग से कुछ रखने के कई प्रकार या वर्ग हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने नियम और विनियम और उद्देश्य हैं। यह विचार कि हम यंत्रवत अपनी आय का 10% देते हैं और हम बच जाते हैं, या कि हम किसी को जरूरतमंद देखते हैं लेकिन बस दूसरी तरफ देखते हैं क्योंकि हमने पहले ही दे दिया है, बाइबल में अज्ञात है। यह भी अज्ञात है कि 10% अंतिम और कठोर संख्या है। दशमांश एक विशेष प्रकार के दान को दर्शाता है, न कि समस्त दान के योग को।
पद 29 में इस बेतुके विचार पर ध्यान दें जो कहता है, कोई भी मनुष्य जिसे समर्पित या अलग रखा गया है उसे छुराया नहीं जा सकता, उसे अवश्य ही मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। यहां जो हो रहा है वह यह है कि यह केवल इब्रानी भाषा में यह कहने का तरीका है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे किसी बड़े अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया गया है छुराया नहीं जा सकता पैसे के लिए, उसे अवश्य ही मरना चाहिए। यह दिलचस्प है कि यह सब कैसे पूरा होता है। हम ईश्वर को समर्पित करने या अलग रखने के बारे में बात कर रहे हैं, उपहार, भेंट, अच्छी चीजें, सकारात्मक चीजें, और फिर पवित्र शास्त्र किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने कोई बड़ा अपराध किया है, कोई बुरी चीज, कोई नकारात्मक चीज, उसी श्रेणी में डाल देता है।
यहां जो प्रदर्शित किया जा रहा है वह यह है कि एक व्यक्ति द्वारा परमेश्वर के बहुत गंभीर कानून का उल्लंघन करने और इस प्रकार मृत्यु दंड पाने तथा परमेश्वर के लिए चीजों को अलग रखने के बीच एक संबंध है। अब कृपया इसका अनुसरण करें क्योंकि हम यह देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर और इब्रानी कानूनी प्रणाली न्याय को किस प्रकार देखता है। जैसा कि हमने अध्याय 26 में देखा कि जब परमेश्वर कोई कानून, कोई विनियमन बनाता है तो वह उन लोगों के लिए आशीर्वाद भी निर्धारित करता है जो उसका पालन करते हैं, और उन लोगों के लिए अभिशाप जो उसका पालन नहीं करते हैं। परमेश्वर के कुछ नियमों के उल्लंघन का अभिशाप शारीरिक मृत्यु है। यह कोई मानवीय निर्णय नहीं है, यह विधि निर्माताओं का समूह नहीं है जो बैठकर अपनी व्यक्तिगत नैतिकता से यह निर्धारित करता है कि किसे जीना चाहिए और किसे मरना चाहिए। यह परमेश्वर का निर्णय है जो मूसा को दिया गया था और तोरह में निर्धारित किया गया था। जब परमेश्वर उल्लंघनकर्ता के जीवन की मांग करता है तो वह जीवन परमेश्वर को समर्पित हो जाता है। यह सब उसी सिद्धांत से बंधा हुआ है कि जब एक भेड़ या बैल को बलि के रूप में अलग रखा जाता है तो उस जानवर का जीवन परमेश्वर को समर्पित होता है। जब न्याय प्रशासन में परमेश्वर के कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो यह न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह दोषी पक्ष को परमेश्वर द्वारा आदेशित दंड दे। न्यायाधीश को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं या नैतिकता की व्यक्तिगत भावना से परे कुछ भी करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा न करने पर न्यायाधीश को ईश्वर की आज्ञा न मानने का दोषी माना जाता है। इसलिए यह मनुष्य नहीं है जो कहता है कि हत्या करने के लिए तुम्हें मरना चाहिए, यह ईश्वर है। जब हम किसी हत्यारे को मृत्यु दंड देते हैं तो मनुष्य केवल ईश्वर के नियमों के अनुसार आज्ञाकारी होता है। परमेश्वर के कानून का उल्लंघन करने के कारण जिस व्यक्ति को मारा जाना है वह परमेश्वर की नजर में इस अर्थ में उनके लिए अलग रखा जा रहा है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को दिया गया जीवन वापस ले रहे हैं। सारा जीवन परमेश्वर का है। यही कारण है कि हमारे पास इब्रानी विचार है कि एक व्यक्ति जो मृत्यु दंड का उल्लंघन करता है और इस प्रकार मृत्यु दंड प्राप्त करता है वह अपने जीवन के माध्यम से अपने स्वयं के अपराध के लिए प्रायश्चित कर रहा है। परमेश्वर के खिलाफ अधिकांश अपराधों, गैर मृत्यु दंड अपराधों के तहत एक जानवर का विकल्प पेश किया जा सकता है। उस दोषी व्यक्ति के पाप फिर जानवर में स्थानांतरित हो जाते हैं और बदले में परमेश्वर दोषी व्यक्ति के जीवन के बदले में उस जानवर के जीवन को स्वीकार करते हैं। इसलिए एक तरह से वह निंदित व्यक्ति परमेश्वर की पवित्र संपत्ति बन जाता है, जैसे कि एक बलि का जानवर परमेश्वर की पवित्र संपत्ति बन जाता है। सिद्धांत यह है कि जो कुछ भी परमेश्वर के लिए अलग रखा गया है, चाहे वह किसी सकारात्मक या नकारात्मक चीज का परिणाम हो, वह परमेश्वर का है। और जो कुछ भी परमेश्वर का है वह उनकी पवित्र संपत्ति है। और आप परमेश्वर की पवित्र संपत्ति के साथ खिलवाड़ नहीं करते। परमेश्वर के लिए अर्पण या अलग करने की विधि के रूप में चर्चित अंतिम नियम दशमांश है। और ये आयतें दो प्रकार के दशमांश की बात करती हैं, भूमि से उपज का दसवां हिस्सा और पशुओं की उपज का दसवां हिस्सा। समझें, ये सभी अलग अलग प्रकार के दान एक इजरायली के जीवन पर एक साथ लागू होते हैं। वह देने के लिए किसी मेनू या विकल्पों की सूची में से चुनाव नहीं करता, वे प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार लागू होते हैं। इसलिए यहां दशमांश का अर्थ है अपनी वृद्धि का दसवां हिस्सा, चाहे वह वृद्धि किसी भी रूप में हो, देना, जो कि अन्य सभी प्रकार के दान और ईश्वर को समर्पित चीजों के अतिरिक्त है जिन्हें हमने कवर किया है।
और चूंकि दशमांश पहले आमतौर पर जानवरों या उपज के रूप में दिया जाता था, लेकिन बाद में ज्यादातर सिक्कों के रूप में, तो एक व्यक्ति अपने दशमांश वाले जानवरों या उपज को पैसे में उनके बराबर का भुगतान करके और 20% अधिभार देकर छुड़ा सकता था। और जो भी बताया जा रहा है वह यह है कि दशमांश उसकी फसलों और झुंडों और पशुओं का एक यादृच्छिक नमूना होना चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे सबसे अच्छा हिस्सा चुनने की बाध्यता नहीं है और न ही उसे अपने दशमांश को आधार बनाने के लिए सबसे खराब हिस्सा चुनने की अनुमति है। दशमांश केवल उस व्यक्ति के पास मौजूद सभी चीजों का एक ईमानदार प्रतिनिधित्व है, अच्छा और बुरा दोनों। यह प्रथम फल भेंट या अनुष्ठान बलिदान से पूरी तरह से अलग है, जहां केवल सबसे अच्छा परमेश्वर को दिया जाता है। इसके अलावा, जैसा कि मैंने कहा, दशमांश प्रथम फल भेंट और अन्य सभी प्रकार के दान के अतिरिक्त है।
मैं यह बताकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि अधिकांश भाग में अध्याय 27 उन प्रतिज्ञाओं और प्रतिबद्धताओं के इर्द गिर्द घूमता है जो किसी ने यहोवा से की है। सामान्य तौर पर परमेश्वर हमारी प्रतिज्ञाओं की तलाश नहीं करता, और जब वह ऐसा करता है तो हमारी प्रतिक्रिया को गंभीरता से लिया जाता है। अपना मन बदलना बहुत महंगा पड़ता है। आमतौर पर 20% जुर्माना, प्रतिज्ञाओं को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से यही सिद्धांत नए नियम में भी लाया गया है और स्वाभाविक रूप से नए नियम में पहले से बताई गई बातों को फिर से नहीं समझाया गया है, बल्कि यीशुआ ने इसका अर्थ दूसरे स्तर पर ले लिया है। उदाहरण के लिए वे कहते हैं कि शपथ लेने से बेहतर है, जिसमें वे सभी बातें शामिल हैं जिनका हमने अभी अध्ययन किया है, बस अपनी हां को हां और अपनी ना को ना ही रहने दो। यीशुआ उस बात की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे हम निश्चित रूप से देखते हैं, परमेश्वर से प्रतिज्ञा करने का एक बड़ा नुकसान है, खासकर अगर आप उसका पालन करने में बहुत अच्छे नहीं हैं। इसके साथ ही लैव्य व्यवस्था की पुस्तक, याजकत्व की पुस्तक समाप्त हो गई। अगले सप्ताह हम गिनती की सचमुच अद्भुत पुस्तक शुरू करेंगे।